नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ देश में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर है। वे राष्ट्रपति भवन में यांत्रिक मेधा के लिए कौशल विकास SOAR के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में यांत्रिक मेधा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और अब हर किसी के लिए इस तकनीक को सीखना अनिवार्य हो गया है।
भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्केलिंग फॉर AI रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। इस पहल के अंतर्गत प्री AI मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों को AI प्रमाण पत्र प्रदान किए और स्किल द नेशन चैलेंज नामक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य तथा कार्य परिस्थिति संहिता 2020 शामिल हैं। इन संहिताओं में गिग वर्कर सहित अन्य श्रमिक, मजदूरी, रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी, बोनस और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। सरकार ने कहा है कि ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में अब तक 35,657 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये योजना देश के उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI से दिसंबर में 29% की वृद्धि के साथ 21 अरब 63 करोड़ लेनदेन किए गए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार ये लेनदेन वार्षिक 20% बढ़कर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष नवंबर में ये 87,721 करोड़ रुपए था। औसत दैनिक लेनदेन की संख्या बढ़कर 69,80,00,000 हो गई है। देश के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऋण वितरण सेवा शुरू कर दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। कंपनी ने मंगलवार को 51वीं बोर्ड बैठक में लगभग 4,300 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री मोदी ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित विभिन्न क्षेत्रों की 5 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। 5 राज्यों से जुड़ी इन परियोजनाओं की कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ SIR प्रक्रिया के संबंध में दर्ज की गई 2 पुलिस शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय ने एक बयान में आरोपों को पूर्व नियोजित और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 आज से आंशिक रूप से लागू हो गया है। केंद्र ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों के लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य खिलाड़ियों के कल्याण के लिए खेल प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिक आचरण और सुशासन को प्रोत्साहन देना है। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप कल बंगलुरु के गंजूर में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू हुई। प्रतियोगिता में देशभर से लगभग 1,000 युवा लड़के और लड़कियों की श्रेणियों में विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। सेमीफाइनल 3 जनवरी को और फाइनल मुकाबला 4 जनवरी को खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और बिहार में ठंड रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में भी आज कुछ स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब तथा पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।